आ गए हैं हम पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हुए। मेरा नाम है अर्शन मोहंती। आज हम थर्ड चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। अगर मैं बिना दबाव के घर लौटने का वचन दूं, क्या मैं दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूं? योगी अपने पिताजी से पूछते हैं। उनके पिताजी ने कभी भ्रमण और यात्रा से उन्हें मना नहीं किया है, बल्कि उनके पिता ने उन्हें और उनके दोस्तों को फर्स्ट क्लास टिकटों में आरामपूर्वक सफ़र कराया है। पिताजी का रेल रोड का ऑफिशियल पोस्ट काफ़ी ही फायदेमंद था इस भ्रमण प्रिय परिवार के लिए। एक दोपहर को पिताजी योगी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें अपने दोस्त को बिजनेस मैटर में एक प्रपोजल भेजना है, परंतु वो उनका पता खो दिए हैं। अपनी बातें ख़त्म करते हैं योगी के हाथों में एक राउंड ट्रिप के टिकट और कुछ पैसे पकड़ा देते हैं और कहते हैं, मुझे पूरा मालूम है ये चिट्ठी तुम उन तक पहुंचा सकते हो, हम दोनों के ही मित्र प्रभानंद के द्वारा। एंड ऐसे ही वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो तुम्हें अपने योग के रास्ते में भी काफ़ी सहायता करेंगे। ये कहकर उनके हाथ पे दो लेटर पकड़ा दिए। बनारस स्टेशन पहुँचते ही योगी उनके घर को रवाना देते हैं। उनके घर के सामने पहुँचते ही वो घर का दरवाज़ा खुला पाते हैं और उसी दरवाजे से जुड़ी एक सीढ़ी उन्हें मिलती है। उस सीढ़ी को जैसे ही वो लेकर ऊपर जाते हैं, उनके सामने स्वामी जी होते हैं। स्वामी जी अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। जैसे ही स्वामी जी को आभास होता है योगी के वहाँ होने का, वो अपनी आंखें खोलते हैं और पूछते हैं, क्या तुम भगवती के बेटे हो? योगी के कुछ कहने से पहले ही वो समझ गए। योगी ने सर ऊपर नीचे करके अपना जवाब हाँ बताया और उन्होंने उन स्वामी जी के हाथ में लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन पकड़ा दिया, जो कि अब बिल्कुल भी काम का नहीं था। वो पहचान चुके थे कि वो भगवती के बेटे हैं। योगी को उन्होंने घर पे बुलाया और बिठाया और स्वामी जी कहने लगे, वर्तमान तो मैं दो पेंशन का लाभ उठाता हूँ, पहला जो तुम्हारे पिता ने मुझे करवा के दिया है और दूसरे मेरे मृत पिताजी ने। योगी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, आपके पिता जो कि ईश्वर को प्रिय हो चुके हैं, वो आपको पैसे कैसे भेजते हैं? क्या वो आपके झोली में पैसे डाल के चले जाते हैं? ये सुनकर स्वामी जी हंसने लगे। योगी ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, उनका पेंशन पैसों में नहीं बल्कि शांति में है। उन्होंने ही मुझे ध्यान करना सिखाया है और इसी ध्यान से ही मैं सारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर से काफ़ी दूर जा चुका हूँ। मुझे अब पैसे अच्छे नहीं लगते, जितने में गुजारा हो जाए उतना ही काफ़ी है। ये बातें तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगी, आखिर समय को भी अपना करिश्मा करने दो। यही कहते ही स्वामी प्रभानंद ध्यान में चले जाते हैं। योगी को ये चीज़ समझ नहीं आती है, उन्हें तो केदारनाथ बाबू के बारे में जानना था। इसी बीच स्वामी जी योगी का दिमाग पढ़ लेते हैं और कहते हैं, छोटे महाशय चिंता मत करो, केदारनाथ बाबू बस अपने रास्ते पे ही हैं। और कहते ही स्वामी जी वापस शांति में मिल जाते हैं। मैंने अपने घड़ी में देखा, तब तक 30 मिनट हो चुके थे। स्वामी जी ने अपना आँख खोला और कहा, केदारनाथ बाबू बस पहुंचने ही वाले हैं। यही बातें ख़त्म करते ही योगी केदारनाथ बाबू से मिलने के लिए नीचे उतर जाते हैं। तो योगी केदारनाथ बाबू से पूछते हैं, क्या आप ही केदारनाथ जी हैं? हाँ के साथ वो एक सवाल करते हैं, क्या तुम भगवती के बेटे हो और मेरा तब से इंतज़ार कर रहे थे? हंस के कहते हैं। योगी फिर से पूछते हैं, आपको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? केदारनाथ बाबू कहते हैं, आज सुबह से ही बड़ी अजीब घटनाएँ हो रही हैं। सुबह मैं गंगा में नहाने गया था तो मुझे स्वामी प्रभानंद दिखते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मेरे घर पे भगवती का बेटा मुकुंद इंतज़ार कर रहा है, परंतु मुझे समझ नहीं आता उन्हें कैसे पता कि मैं उसी वक्त किस स्थान पे हूँ। मैं उनके पीछे पीछे आ ही रहा था, वो मुझे पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ से मेरे घर जाने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा, 1 घंटा। फिर स्वामी जी मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ काम है, तब तक तुम भगवती के बेटे से मिलो, वो मेरे घर पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यही कहते ही वो आंखों से ओझल हो गए। योगी बड़े ही आश्चर्य से उनसे पूछते हैं, क्या आपने सच में देखा या आपके आंखों का कोई भ्रम है? इसी बात पे केदारनाथ जी हल्का गुस्सा दिखाते हैं और कहते हैं, मैं भला तुम्हें झूठ क्यों बोलूँगा, इससे मुझे क्या लाभ? स्वामी जी के बिना मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरा यहाँ इंतज़ार कर रहे हो? ये सारी बातें सुन के योगी काफ़ी घबरा गए और उन्होंने सारी बातें केदारनाथ बाबू के सामने रख दिया। इन पूरे समय में मैंने उन्हें एक बार भी अपने आंखों से निकलते हुए नहीं देखा, फिर भी वो आप तक कैसे पहुँचे? इस चीज़ से केदारनाथ बाबू भी आश्चर्य हो गए और योगी की तरह वो भी समझ चुके थे उनकी अनकही शक्तियों को। पहले की तरह इस तरह भी स्वामी जी योगी का दिमाग पढ़ लेते हैं और कहते हैं, अरे तुम इतना ज़्यादा आश्चर्य क्यों हो? ये तो मेरे लिए काफ़ी आम सी बात है। मेरे कोलकाता में रहने वाले शिष्यों को मैं उनके चाहने पर उनके आंखों के सामने प्रकट हो जाता हूँ। ये सारी बातें सुन के योगी इतना ज़्यादा उत्सुक हो गए कि वो और भी इस बारे में जानना चाहते थे। योगी के भविष्य में लिखा था और उन्हें पता था कि उन्हें एक ही गुरु के नीचे आश्रय लेना है, वो कि है श्री युक्तेश्वर जी, जिनसे उन्होंने कभी मिला नहीं अब तक। इन सब के बीच स्वामी जी कहते हैं, मैंने अब तक जितने योगियों को जाना है, परंतु मैंने लाहिरी महाशय जैसा किसी को नहीं देखा। योगी के दिमाग में आता है, अगर शिष्य में इतनी शक्तियाँ हैं तो सोचो गुरु में कितनी होगी। स्वामी जी योगी से कहते हैं, एक गुरु की सहायता का महत्व क्या होता है? मैंने बहुत दिनों से ध्यान किया है, परंतु कभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक नहीं पहुँच पाया। मैं अपने गुरु लाहिरी महाशय के पास जाता हूँ और उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगता हूँ कि ब्रह्मा ही तुम्हें अब रास्ता दिखाएंगे। यह कह के वो मुझे आशीर्वाद देते हैं। मैं कुछ महीनों बाद वापस लाहिरी महाशय के सामने गया। उनका आशीर्वाद लेते हुए उनसे व्यक्त किया कि मैं उनसे कितना शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही मैं और एक समस्या के बारे में बताता हूँ। स्वामी जी ध्यान के साथ साथ अपने क्लर्क की नौकरी, जो योगी के पिताजी के रेलवे कंपनी में वो किया करते थे, तो वो एक साथ संभाल नहीं पा रहे थे। लाहिरी महाशय उन्हें पेंशन ले लेने को कहते हैं। अगले दिन स्वामी जी दफ्तर में रीढ़ की हड्डी के नाम के दर्द पे अपनी पेंशन अप्रूव करा लेते हैं। इसमें योगी के पिताजी का भी बड़ा योगदान था। बस अपनी बातें ख़त्म करते ही योगी और केदारनाथ जी अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। उस वक्त अंधेरा होना भी चालू हो गया था। योगी जी अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकालते हैं और केदारनाथ जी को पकड़ा देते हैं। केदारनाथ जी एक लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर वो चिट्ठी को पढ़ते हैं। इस चिट्ठी में ये लिखा होता है कि भगवती चाहते हैं कि केदारनाथ बाबू उनके दफ्तर में काम करें, परंतु इस प्रपोजल को स्वीकार ना करते हुए योगी से कहते हैं, तुम्हारे पिताजी की इस प्रपोजल से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, परंतु मैं बनारस छोड़ के नहीं जा सकता। केदारनाथ बाबू मजाकी भाव से अपना दुख व्यक्त करते हैं, काश स्वामी जी की तरह मेरी भी दो शरीर होती। तो कल हम वापस मिलते हैं इसी जगह पे IGTV पे नए चैप्टर के साथ एंड एक नई उम्मीद के साथ।